इप्सिता अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ से हटाने ही जा रही थी कि अभिमन्यु ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, आप हमें बार बार थैंक यू बोलना बंद करिए, हम आपके होने वाले पति हैं और कोई भी पत्नी अपने पति को इस तरह बार बार थैंक यू नहीं बोलती। अभिमन्यु इतना बोलकर मुस्कुरा दिया। इप्सिता की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई थी। अभिमन्यु के शब्दों से इप्सिता को थोड़ी शर्म आ रही थी। उसने ये पति पत्नी वाली बात अब तक अपने दिमाग में भी नहीं सोची थी जो अभिमन्यु ने इतनी आराम से कह दी। इप्सिता ने अपनी पलकें झुका लीं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो अभिमन्यु से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर अभिमन्यु ने उसकी कलाई से अपनी पकड़ ढीली कर दी और इप्सिता ने भी धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। इप्सिता कुछ नहीं बोल रही थी, इसलिए अभिमन्यु ने बात शुरू करते हुए कहा, इप्सिता आपको एक बात पता है? अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, क्या? अभिमन्यु ने इप्सिता की आंखों में देखते हुए कहा, जब आप हंसती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। उस दिन सगाई में भी हम आपको ये बात नहीं बोल पाए, लेकिन उस दिन भी आप बहुत खूबसूरत लग रही थीं। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और उसने अपने मन में कहा, हैंडसम तो मिस्टर अभिमन्यु भी बहुत लग रहे थे, तो क्या मुझे भी उन्हें कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए? इप्सिता अपने मन में ये बात सोच रही थी। ये सोचते हुए उसने अभिमन्यु की तरफ देखा और वो कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और दो वेटर अंदर आए, एक ट्रॉली लेकर जो खाने के बर्तनों से भरी हुई थी। उन्होंने एक एक कर वो सारा खाना टेबल पर रखा और चुपचाप चले गए। कुछ देर बाद अभिमन्यु और इप्सिता दोनों आराम से लंच कर रहे थे। इप्सिता बीच बीच में अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर में उन दोनों का लंच खत्म हो गया। इप्सिता ने अपना मुंह नैपकिन से पोंछते हुए कहा, यहाँ का खाना तो सच में बहुत अच्छा है। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इप्सिता बोली, वैसे लंच पर तो हम आपको ले जाने वाले थे, लेकिन आप ही हमें यहाँ ले आए। अभिमन्यु ने अपने दोनों कंधे उचकाते हुए कहा, तो क्या हुआ, एक ही बात है, आप हमें लंच पर ले जाएं या हम आपको, जाएंगे तो हम दोनों साथ ही। इप्सिता ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, एक ही बात नहीं है, अगर हमें कभी मौका मिला तो हम आपको अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, वाई नॉट, इसी बहाने आपसे दोबारा मिलने का मौका मिल जाएगा। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी अभिमन्यु का फ़ोन बजा। अभिमन्यु ने फ़ोन की स्क्रीन देखी और इप्सिता से कहा, एक्सक्यूज मी। इप्सिता ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कॉल पिकअप करते हुए कहा, हाँ बोलो, क्या हुआ? फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी की आवाज़ आई और अभिमन्यु ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ ठीक है, उन्हें अंदर ले आओ। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अगर आपकी कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो आप जा सकते हैं मिस्टर अभिमन्यु, वैसे भी हमें अभी यहाँ से नंदिनी को लेने जाना है और उसके बाद हम घर पहुँचेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। अभिमन्यु इप्सिता के माथे की शिकन देखकर मुस्कुराते हुए बोला, रिलैक्स, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको इप्सिता। अभिमन्यु की बात सुनकर इप्सिता हैरानी से बोली, क्यों? अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, जवाब अभी आपको मिल जाएगा। इप्सिता को अभिमन्यु की बात समझ नहीं आ रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, क्या बोल रहे हैं आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अभिमन्यु इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुला और नंदिनी इप्सिता का नाम लेते हुए बोली, ईशु। नंदिनी की आवाज़ सुनकर इप्सिता उठकर खड़ी हो गई। नंदिनी भागते हुए उसके पास आई और बोली, तू ठीक तो नहीं ना, तुझे एक्सीडेंट में कहीं चोट तो नहीं आई ना? इप्सिता ने नामे अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं, डोंट वरी, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? इससे पहले कि नंदिनी इप्सिता की बात का जवाब दे पाती, अभिमन्यु बोला, हमने बुलाया है मिस नंदिनी को यहाँ पर। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखने लगी। तभी नंदिनी अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, थैंक्स चीजू, मेरी दोस्त को इतनी बड़ी समस्या से निकालने के लिए। वैसे एक तरह से देखा जाए तो सब लोग बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाकर भेजता है। ये मेरी बेस्टी है ना, ये सबसे बड़ी ट्रबल मेकर है और मेरे जीजू ट्रबल सॉल्व करने वाले, क्या खूब जमेगी आप दोनों की। इप्सिता थोड़ा शर्माते हुए अभिमन्यु की तरफ देखी। वो नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। इप्सिता ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, थैंक यू सो मच नंदिनी, हमारी इतनी तारीफ करने के लिए। नंदिनी हंसने लगी और उसने अभिमन्यु के बगल में जाकर खड़े होते हुए कहा, वैसे जीजू आप सच में बहुत हैंडसम हो। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू सो मच इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। और नंदिनी, आप कुछ खाएंगी, हम आपके लिए कुछ ऑर्डर करें? नंदिनी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जीजू, मुझे तो कुछ नहीं खाना, मेरा पेट पूरा भरा है, बस आपसे थोड़ी सी बात करनी थी, इफ़ यू डोंट माइंड। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बोलिए ना, क्या बात करनी है आपको हमसे? इप्सिता ने कैसे ही नंदिनी के मुंह से ये बात सुनी, इप्सिता का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं ये पागल लड़की क्या पूछने वाली है मिस्टर अभिमन्यु से। इप्सिता नंदिनी को घूरते हुए देख रही थी। तभी नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा, जीजू आपका कोई बड़ा छोटा भाई नहीं है क्या? मैं एडजस्ट कर लूंगी, मुझे भी अपनी लाइफ सेट करनी है। इप्सिता ने जैसे ही नंदिनी के मुंह से ये बात सुनी, उसने नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसे गुस्से से घूरकर अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में उसके कान में बोली, नंदिनी कैन यू प्लीज शट अप, अब अगर तुमने इस तरह की एक और बात की तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे। नंदिनी इप्सिता की बात सुनकर मुंह बनाने लगी और इप्सिता ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, आई एम सॉरी, हमारा कोई छोटा बड़ा भाई नहीं है। हाँ, हमसे छोटी तीन बहनें जरूर हैं, एक हमारी बहन और दो हमारी चाचा की बेटियां। नंदिनी इप्सिता की बात कहाँ सुनने वाली थी, उसने फिर से एक सवाल पूछा, ओ सो सैड, लेकिन जीजू आपका कोई दोस्त भी नहीं है क्या जो ऐसे ही आपकी तरह राजघराने से हो? अभिमन्यु नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन उसकी ऐसी बेवकूफी भरी बातें सुनकर इप्सिता को बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, इसलिए उसने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। फिर इप्सिता ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ नंदिनी की तरफ से सफाई देते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर अभिमन्यु, ये लड़की पूरी पागल है, आप प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये इसी तरह की बातें करती है, इसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, इप्सिता इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मिस नंदिनी बहुत क्यूट है। जैसे ही नंदिनी ने ये बात सुनी, वो इप्सिता से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, तू चुप करेगी, मैं जीजू से बात कर रही हूँ, तुम हम दोनों के बीच में मत बोल, है ना जीजू? अभिमन्यु ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। अब इप्सिता और कुछ नहीं बोल पाई। तभी नंदिनी ने कहा, मैं क्यूट तो हूँ और थोड़ी सी हॉट भी हूँ, अगर आपका कोई दोस्त मुझ में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे बताइएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकती हूँ। इप्सिता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, पता नहीं ये लड़की और क्या क्या बोलने वाली है। इप्सिता ने नंदिनी को लगभग डांटते हुए कहा, नंदिनी चुप करो, पागल हो गई हो क्या तुम? जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है तुम वो बोल रही हो। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखकर कहा, कोई बात नहीं, और वैसे भी जो बातें दिल में आए उन्हें बोल देना चाहिए, ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, वरना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी भावनाएं कभी व्यक्त नहीं कर पाते, वे अपनी बात कभी सामने वाले को नहीं बता पाते और मन ही मन में बेचैन रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए।
अभिमन्यु के ये गहरे विचार सुनकर नंदिनी और इप्सिता दोनों ही बिल्कुल चुप हो गईं। अभिमन्यु भी ये बात बोलकर बिल्कुल चुप हो गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपने किसी ख्याल में खो गया हो या फिर किसी बात को सोचकर ये सब बोल रहा हो। क्रमशः